श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 8। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ग्रहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात्। तो अनुवाद, इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाते हैं। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्री बलदेव विद्याभूषण की टीका। वो कहते हैं कि पिछले श्लोक में अर्थात श्लोक नंबर 7 में भगवान ने बताया था, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठाणी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन षष्ठाणी इंद्रियाणि, मन के साथ 6 इंद्रियों को लेकर के ढो रहा है जीव और उससे संघर्ष कर रहा है क्योंकि इंद्रियां उसको इंद्रिय विषयों की तरफ लेके जाती हैं। तो यहां पे किस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में हम अपनी इंद्रियों को लेके जा रहे हैं वह बताया जा रहा है। तो शब्द है यहां पे यत, यानी कि जब जीव एक शरीर में प्रवेश करता है दूसरे शरीर को त्याग कर, और जैसे ही वह उस शरीर को त्यागता है जो उसने पहले प्राप्त किया है जिसका वह ईश्वर था, यानी जीव जो है वो इंद्रियों और शरीर का ईश्वर है, तो वो जीव अपने साथ सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों को लेके जाता है। तो आप कहेंगे नहीं, आंखें तो नहीं लेके जाता, कान तो नहीं लेके जाता। देखिए थोड़ा कठिन बात है, लेकिन एक बात ये भी है कि आंख नाक कान तो गोलक मात्र हैं, इनपुट के माध्यम में वस्तुतः इंद्रियां अंदर होती हैं, आंतरिक इंद्रियां कहा जाता है इनको, तो उन करके लेके जाता है और उसके बाद फिर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, फिर नए शरीर में अलग प्रकार की आंख, अलग प्रकार के कान, अलग प्रकार के नासिका, इस प्रकार को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जीव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, जिस प्रकार से एक हवा हवा जो है वह फूलों की गंध को ढोती है। यहां पे शब्द आया है वायुर्गंधा निवाशयात, तो आशयात मतलब स्रोत, तो यानी कि जो फूल है वह गंध का स्रोत है, फूल से गंध आती है, तो उस गंध को वायु ढो के चल रही है और वो दूसरी जगह जा रही है। तो जिस प्रकार से वायु गंध को ढोती है उस प्रकार से जीव अपनी इंद्रियों को एक शरीर से दूसरे शरीर में ढो रहा है। अब एक अद्भुत बात यह भी है कि वायु की प्रकृति और सुगंध की प्रकृति में अंतर है, उसी प्रकार से जीव में और उसकी भौतिक इंद्रियों में अंतर है, लेकिन भौतिक इच्छाओं के कारण व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में इनको ढो रहा है। तात्पर्य यहां पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य को देख रहे हैं, यहां पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। हम अपने इंद्रियों और शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक, यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। ये आप लोग 14वें अध्याय की व्याख्या में समझ चुके होंगे कि जो व्यक्ति सत्वगुण का संग करता है वह ऊपर के योनि में जाता है, देवता बनता है या और भगवत धाम में जा सकता है अगर वो शुद्ध सत्व में आ जाता है, और रजोगुणी व्यक्ति को मानव जन्म मिलता है और तमोगुणी व्यक्ति को पशु की योनि प्राप्त होती है। तो हम निर्णय कर सकते हैं कि इस जीवन में हम कौन से कर्म करें जिससे मुझे आगे कौन सी योनि प्राप्त हो, इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है, यानी कि जब मानव जीवन मिला है तब हमें स्वतंत्रता मिलती है। ध्यान देना हो कि बिल्ली और कुत्ते के शरीर में तो हमें कुत्ते और बिल्ली की तरह ही कार्य करना पड़ेगा, वहां कोई विवेक नहीं होता है, वहां कोई छूट नहीं होती है, लेकिन मानव जीवन में ही हमको ये स्वतंत्रता मिल पाती है कि हम ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा हमारे आगे उन्नति हो सके। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि अन्य योनियां हैं वो केवल वन वे हैं, आप पीछे नहीं जा सकते, केवल आगे ही बढ़ सकते हैं, उत्तरोत्तर प्रगति हो सकती है जब तक कि व्यक्ति मानव नहीं बने, लेकिन मानव जीवन एक चौराहा है तो हम किधर भी जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, निर्भर करता है कि हम कैसी क्रियाओं में संलग्न होते हैं। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरी शरीर तक ले जाती है। यह भी हमने समझा दिया, अपने कर्मों के अनुसार हमारी इच्छाएं परिवर्तित होती हैं, हमारी चेतना का निर्माण होता है, और मृत्यु के समय जैसी हमारी चेतना होगी उसके अनुसार हमारा अगला शरीर होगा। तो यानी मानव जीवन में व्यक्ति को बहुत दायित्व वाला जीवन बिताना चाहिए जिसमें वह भगवान की सेवा में लगा संलग्न रहे। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन कर रहे थे और ऐसे ही प्रभुपाद बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में रहता है तो उसे कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त होगा। तो व्यक्ति ने बोला कि कुत्ता बन जाने में क्या दिक्कत है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। तो लोग इतने घोर अंधकार में हैं कि वो कुत्ता बिल्ली या निम्न योनि की यातना भरी स्थिति को भी बुरा नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ पाएगा कि ये कुत्ते की योनि प्राप्त करना ये बहुत या बिल्ली की योनि प्राप्त करना या और कोई अज्ञान भरी जानवर की योनि प्राप्त करना ये बहुत बड़ा दुख है और उसे बचने का प्रयास करेगा व्यक्ति। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। ये हम चर्चा 14वें अध्याय में कर चुके हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुणी लोग हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं, रजोगुणी लोग मध्य में स्थित होते हैं, मानवों के बीच में जन्म लेते हैं, और तमोगुणी लोग जानवर की योनि प्राप्त करते हैं। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और दैवी गुण क्या है उसकी चर्चा भी आगे की जाएगी। दैव और असुर आसुरी स्वभाव वो आगे के श्लोकों में भी चर्चा करेंगे। तो हमें दैवीय गुणों को सुन करके उनका अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना शक्तिशाली ज्ञान आपको दिया जा रहा है, यानी कि इस भगवद गीता के अनुसार अगर हम चलेंगे तो एक दिन हम साक्षात भगवान के साथ रहने का मौका प्राप्त कर लेंगे। ये कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है, ऐसा दावा इस जगत में कोई नहीं कर सकता। और अगर करेगा भी, पहली बात तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं कि भगवान का धाम कहाँ है क्या है, और अगर करेगा भी तो उसको ये पता नहीं है कि भगवान के धाम पहुंचे कैसे। लेकिन भगवदगीता के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य खुलेगा और हम भगवान के धाम एक दिन पहुंच जाएंगे अगर भक्ति ठीक से करते रहे। तो थोड़ा अंतर ये है कि जो लोग सत्वगुणी होते हैं, दैवी गुणों से युक्त होते हैं तो वो देवताओं के पास पहुंचते हैं, लेकिन जो दिव्य गुणों से युक्त है अर्थात भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो निर्गुण अवस्था को प्राप्त होता है और भगवान के धाम की प्राप्ति करता है जहां से उसे वापस कभी नहीं आना पड़ता। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। और काफी बार हम लोग ऐसा बोलते भी हैं कि वो तो सब खत्म हो गया, वो खत्म हो गए, लेकिन एक्चुअली कोई खत्म नहीं होता है। जिस प्रकार से हम लोग घर परिवर्तित करते हैं ऐसे ही आत्मा एक देह से दूसरे देह को जा रही है, देह का परिवर्तन हो रहा है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर रहा है, देह का अंतर मतलब देह का परिवर्तन, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। थोड़ा इसको समझ दीजिए, इस जगत में हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारे हृदय में इच्छाएं बन जाती हैं। अब ये कर्म भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले इस प्रकार की इच्छाएं हैं। तो आप कहेंगे अरे भाई फिर तो हम फंस गए, भाई पहले जो इच्छा करी थी उससे शरीर प्राप्त हो गया, अब ये इच्छा शरीर कर रहे हैं पुरानी इच्छाओं के अनुसार, तो फिर हमें आगे इसी प्रकार के शरीर प्राप्त होंगे। सही बात है, इसीलिए भक्तों से श्रवण करना चाहिए, शास्त्र से श्रवण करना चाहिए, तब व्यक्ति को ज्ञान होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब वो इस विवेक को पाता है, एक आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करता है, तब वो ठीक प्रकार से ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बिता पाता है और फिर श्रेय के अनुसार कार्य कर पाता है। आप कहेंगे श्रेय क्या होता है? श्रेय का अर्थ है कि वो चीज जिससे जीव का भविष्य में बहुत बड़ा कल्याण हो। जैसे अभी कोई नाम जप कर रहा है तो हो सकता है उसको नाम जप करना अच्छा ना लगता हो सकता है भगवत गीता पढ़ना अच्छा ना लगता हो, लेकिन इससे आगे उसका अत्यंतिक कल्याण होगा इसलिए वो करता है। और जो लोग अभी सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें अपना जीवन बिता रहे हैं, तो उनको अभी सुख मिल रहा है लेकिन आगे उनका जिसे कह सकते हैं परलोक सुधरेगा नहीं, आगे का जो जीवन है वो सुधरेगा नहीं। या इस जगत में भी कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, तपस्या करता है ताकि आगे अच्छी नौकरी मिले, उसके जीवन सुचारू रूप से चले, तो इसे कहते हैं श्रेय आचरण। लेकिन ये भी बहुत बड़ा श्रेय नहीं है, लेकिन इस जीवन का श्रेय की बात कर सकते हैं। फ्यूचर में लाभ हो भले इस समय मेरे को तपस्या करनी पड़े, ये श्रेय होता है। और प्रेयस का अर्थ है व्यक्ति केवल वर्तमान में मिलने वाली इंद्रिय तृप्ति को ही देखे। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि इस जगत में हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारे हृदय में भगवान की भक्ति की वासना, भगवान की भक्ति की इच्छा निर्माण हो। और इसके लिए ही भगवद गीता सुनते हैं, इसके लिए हरि नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ताकि भगवान की भक्ति हमारे चित्त में बड़े। ध्यान देना चाहिए कि कर्मों का प्रभाव संस्कार पड़ता ही है, चाहे ध्यानपूर्वक करिए चाहे ध्यानपूर्वक करिए। अच्छे से ध्यानपूर्वक इच्छापूर्वक करेंगे तो अधिक संस्कार बनेगा, लेकिन कोई भी कर्म करते हैं उसका संस्कार मन में बनता ही है। तो इसीलिए ये बड़ा प्रेरणादायक बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, शुरुआत में हमको पता ही नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन भक्तों का सुन करके अगर करने लगता है व्यक्ति, तो फिर निश्चित रूप से उसको उसके हृदय में कृष्ण की सेवा करने की जो सुप्त इच्छा है वो जागृत होती है। और फिर अगर ये इच्छा रहेगी तो भगवान के धाम चला जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, अगर भौतिक इच्छा होगी तो इस जगत में शरीर मिलेगा, तो अगर आध्यात्मिक इच्छा ही रही तो भगवान का धाम में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। यहां यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। अर्थात कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हमारी इच्छाएं स्टोर रहती हैं सॉफ्टवेयर की तरह, और उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार व्यक्ति को अगला शरीर धारण करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, फिर समझ लीजिए, जैसे कोई मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, गलत गलत कार्य कर रहा है, तो ये तमोगुणी वासना हृदय में जागृत होगी, तो ऐसे व्यक्ति को फिर निम्न पशु का शरीर प्राप्त दिया जाएगा। ये प्रकृति के द्वारा होता है। और एक अद्भुत बात है कि जब हम शरीर में रह रहे होते हैं तब भी व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां उसको बार बार खींचती हैं इंद्रिय विषयों की तरफ। आंख कहेगी सुंदर रूप देखो, कान कहेगा मुझे ये सुनना है, जीभ कहेगी कि मुझे खाना है, ये बोलना है। इस प्रकार से इंद्रियां ऐसी 11 पत्नियों की तरह हैं जो एक पति को खींचे अपनी अपनी तरफ। तो एक तो ये संघर्ष है, दूसरा इस शरीर को बनाए रखना ये बहुत बड़ा संघर्ष है, ये भी आप समझते ही होंगे। और आप इसमें अगर हम ये भी मान लें या ये देखते ही हैं कि लोग सोचते हैं कि हम शरीर हैं, भारतीय हैं, अगर ये उपाधि और जोड़ लें तो फिर सोचता है अरे मैं तो इस समाज का बहुत सम्माननीय व्यक्ति हूँ, तो मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी सुख सुविधाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो और संघर्ष बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से मन को केंद्रित रखते हुए व्यक्ति संघर्ष में लगा है। और आप समझते ही हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जानवरों की योनि में तो जो व्यक्ति दमदार है बस वही जी सकता है, बाकी एक दूसरे को व्यक्ति दूसरे से खा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये जीवन बहुत संघर्षमय है। और एक अद्भुत बात बहुत अच्छी सीखी हमने कि भाई जब जन्म जन्मांतर से संघर्ष कर ही रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात, जब जन्म जन्मांतर से संघर्ष कर ही रहे हैं तो क्यों ना भक्ति के लिए संघर्ष करें। भक्ति के लिए संघर्ष करेंगे तो भगवान की धाम की प्राप्ति होगी, तो जीवन हमेशा हमेशा के लिए संघर्ष से मुक्त हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि समझ सकें कि इस जगत में अनादिकाल से हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना भगवान की भक्ति के लिए संघर्ष करें। निश्चित सी बात है, साधना काल में थोड़ा संघर्ष होता है, मन नहीं मानता है, इंद्रिय नहीं मानती हैं, लेकिन भगवान के लिए संघर्ष करें, भगवान का अनुग्रह होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और उसके बाद जीवन में कभी कोई संघर्ष नहीं रहेगा। कितना बड़ा लाभ है। और आप देखते हैं जब हम भक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हमें भक्ति में कुछ रुचि भी देते हैं, जिसके कारण ये संघर्ष भी जो है वो मीठा हो जाता है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर इस भक्ति के संघर्ष को हम लोग चुनें और भगवान के पवित्र नाम का जप करने में संघर्ष करें। एक अच्छी बात आती है, आचार्य बताते हैं कि भगवान को ये भौतिक जगत के भक्त भी बहुत पसंद हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत के भक्तों को कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो ये हमारा संघर्ष है कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास, ये भी कृष्ण को बहुत सुख देता है, और उससे भगवान के हृदय में कृपा उदित होती है, और उस कृपा से हम भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। अपने संघर्ष मात्र से नहीं, लेकिन अपने प्रयासों से, संघर्ष के प्रयास से भगवान खुश होते हैं और भगवान की कृपा हम पर बरसती है, और फिर हम भगवत प्राप्ति कर पाते हैं।